सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, घर धंधा संपत्ति धन आदि सब भगवान का, ठाकुर जी का है बस। और तद विस्मरण पर में उसके भूली में व्याकुलत हो जाए, भगवान को भूल गए, गजब हो गया, उसमें दुख हो जाए, वो सब काम भगवान का करते हैं हम तो, बस उसको याद रखेंगे, ये भक्ति है। ऐसे भगवान का काम करे, भगवान का घर में ही धंधा करे तो भगवान का, ठाकुर जी का काम है, ये बाल बच्चे ठाकुर जी के हैं, प्रभु के हैं सब, धन संपत्ति वैभव जो कुछ है हमारे भगवान का है, इसको बिगड़ने नहीं देना है। अरे घाटा लग जाए, नफा हो जाए तो ठाकुर जी के नफा हुआ, ठाकुर जी घाटा लगा, बच्चा हो जाए तो भाई ठाकुर जी के बालक जन्मा है, मर जाए तो ठाकुर जी के प्राणी मर गया, जन्म जाए तो उसका वैसे विधि पूर्व उसका भी कोट लाट लड़ाओ, और मर जाए तो गाड़ दो जला दो, वो काम कर दो, ठाकुर जी का काम करना है। मतलब हमें क्या बचने से, जन्म से है क्या मरने से, हमें क्या लेना है, हमें तो ठाकुर जी का काम करना है। ऐसे उत्साह से काम करें तो ठाकुर जी कहते मेरा काम करते हैं, भगवान बड़े राजी होते हैं, मानो भगवान को कोई निहाल कर दिया हो, बड़ी कोई मदद कर दी हो, ऐसे राजी हो जाए भगवान। क्यों? कि भगवान राजी होते हैं हमारे कल्याण से या हमारे उद्धार से। भगवान तो कमजोर में जो उनको सहायता देने से राजी हो जाएंगे, हम सहायता न करें तो बेचारे कमजोर हैं, कैसे काम चलाएंगे, ऐसे नहीं है। तो इसे भगवान राजी बहुत होते हैं, ऐसी मस्ती से भगवान का काम करते। योगी नाम भी सर्वेशा, सब योगी श्रेष्ठ, परंतु मदगते अंतरात्मा ना, अंतरात्मा मदगत है, प्रियता भगवान में हो गई, और श्रद्धा और विश्वास और तत्परता भगवान के प्रति हो गई। समय युक्ततम मत, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। ऐसे कह करके फिर भगवान कहने लगे महाराज, तो सातवां अध्याय का तो भगवान उवाच ही है, अर्जुन बोले नहीं, और भगवान ने कहने की आ गई मन में। हर एक आदमी बोलता है ना, उसका पता लग जाए कि इसको क्या प्रिय लगता है। भोजन करने वाले को देखकर दो चार बार भोजन कराओ तो पता लग जाए कि अमुक चीज की रुचि है नहीं। ऐसे ही भगवान कहने लगे, कोई संत महात्मा कहने लगे तो उनकी क्या रुचि है, तो बार बार बात आती है तो समझना चाहिए इस पर रुचि है नहीं। ऐसे गीता की तरफ हमने देखा, हमने विचार किया कि गीता में भगवान की रुचि क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं, तो रुचि का पता लगा। कैसे पता लगा? आप देखो, गीता जानने वाला याद कर लो, अयति ही श्रद्धेयोपेतो योगात् चलित मानस अप्राप्त योग संसिद्धि कांगते कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने पूछा कि अंत में भगवान आपकी याद न रहे तो किस गति को जाता है, ये मेरा बड़ा प्रश्न है और संशय है मन में, उभय वृक्ष नष्ट तो नहीं हो जाता है, और आपके सिवाय संशय असंशय को दूर करने वाला कोई है नहीं। ये बात पूछी तो भगवान राजी बहुत हुए, इस बात के पूछने से भगवान बहुत राजी हुए। भगवान को पार्थ नाम प्यारा था ना, पार्थ में ही वे नाम उत्तर विनाशस्त से विद्यते, भैया उसका विनाश नहीं होता प्रधानंदन, और नहीं कल्याण कृतकृत दुर्गति तात गच्छति। सत्रह अध्याय का 40वां श्लोक होता है, तात संबोधन या तात प्यारे, एक बार दिया तात संबोधन, गीता भर में दोबारा नहीं आया। प्यारे कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति नहीं होती। पहले तो बात यही थी महाराज, अंत में भगवान की याद रहे न रहे तो दुर्दशा क्या होगी। कबीर साहब ने भी कहा है, कबीर हमारी सब सधी एक रही मन माए, और तो हमारा सब काम ठीक हो गया, एक मन में रही, धक्का लगेगा काल का तब इज्जत रहेगी ना, जब मौत आएगी उस समय इज्जत रहेगी कि नहीं, उस समय भी इज्जत रहेगी, भगवान की याद आ गई तो सब बेड़ा पार है। अरे कहीं मन अटक गया और कहीं भटक गया तो क्या पता क्या दशा हो जाएगी, कहाँ जन्म हो जाएगा। भरत मुनि ने इतना राज्य छोड़ा, सब कुछ किया, एक हरण के बच्चे में मोह रहने से हरिण बन गए। इस वास्ते अंत समय में नहीं हो तो क्या दशा होगी, नष्ट तो नहीं हो जाता, भगवान का ना भैया तुम निसंग रहो, मेरे लिए काम करने वाला मेरे भजन में लगा, उनका दुर्गति होती ही नहीं, जाओ नहीं कल्याण कृत ग्रस्त दुर्गति तातग्रस्त। ये आश्वासन दिया भगवान ने, बहुत बड़ा। इस पर खुश बहुत हुए भगवान। इसकी पहचान क्या है? तो पहचान इसकी ये है कि ये 47 श्लोक है ना, तो 47 श्लोक में 50वें श्लोक से आप चले हैं 40वें चले, 40वें 47 8 श्लोक तो ये हो गए, 8 श्लोक ये हो गए। अब 7वां अध्याय चला तो उसमें 30 श्लोक है, तो अर्जुन उवाच है ही नहीं। अब 30 श्लोक ये हुए, अगाड़ी 8वां अध्याय चला तो अर्जुन ने थोड़ी सी बात पूछी, तो अपनी बात नहीं पूछी, भगवान ने 7वें अध्याय में 2 श्लोकों में जो अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ कहा है वो बात पूछी है, और पूछ करके अंत में आप कैसे जानने में आते, यही बात वहां लगती। फिर प्रयाण काले से कथन की ओसी नीता दे भी, जो पहले से चल रहा है अंत समय में क्या गति होती है, कोई प्रश्न फिर पूछ लिया। तो 2 श्लोक अर्जुन के हुए, 28 श्लोक है जिसमें 26 श्लोक भगवान के हुए, तो 26 और ये 38 हो गए, और 38 और वे। अब ये 6 अध्याय के 7वां अध्याय और 8वां अध्याय के मिलकर कितने हुए? अरे अर्जुन भगवान के, भगवान के 40 से 47 तक और 30 और आ गया हुआ 26, हाँ जी 64 हुए। अब मेरा 9वां अध्याय चला तो उसमें ही भगवान उवाच ही है, अर्जुन उवाच है ही नहीं, और अपनी तरफ से ही कहने लगे इदुन तुते भूय तमम प्रवक्ष्या मैंने सुई वे, बहुत गुप्त बात कहता हूँ, बड़ी रहस्य की बात कहता हूँ, तू दोष निश्चय नहीं कहता, इस बात तेरे से कहता हूँ। पीछे पड़ गया, भगवान अर्जुन नहीं पूछ रहा है, भगवान के मैं कहूंगा, आज कह दो आप नहीं रहा जाए तो क्या करें, कह दो अच्छी गोपनीय बात कहूंगा, राज विद्या राज गुह्यम सब में गोपनीय बात, सब विद्याओं की राजा विद्या, प्रत्यक्ष जिसका फल है, अभी पाठ करते हो, धर्ममय है और अविनाशी है और करने में बड़ी सुगम, ऐसी बात कहूंगा। 8 विशेषण दिए 202 श्लोक में, ऐसी बात कहूंगा मैं, ऐसे कहकर कहना शुरू कर दिया ऐसा 9वें अध्याय में, तो हृदय की बात निकली और क्या कि मेरी देखो कितनी सुगम है मेरी प्राप्ति, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे पत्ता दे दो, फल दे दो, फूल दे दो, जल पिला दो, इतने में राजी हो जाऊंगा। मैं देवा कैसे भक्तिया पर भक्ति प्रीतम, भक्तिया प्रीत भक्ति संदे, ऐसा भक्ति का दिया उपहार खा लेता हूँ, पत्ता भी खा लेता हूँ, फूल भी खा लेता हूँ, फल भी खा लेता हूँ, ये पत्ता और फूल भी खाने को होता है, भगवान के दर्शन में खा लेता हूँ। बच्चा होता ना छोटा, उसको कुछ मुंह में धर लेता है, पत्थर कोई मुंह में धर लेगा और मुंह में धर लेगा, भगवान के वो देने वाला प्रेम से देता है तो बस मैं तो मेरे में मिला लेता हूँ, खा ही लेता हूँ। जैसे देने वाले को होश नहीं होता कि क्या दे रहा हूँ, तो भगवान को होश नहीं होता क्या खा रहा हूँ, बुद्धरान जी छिलका दे रही है तो छिलका खा रहे हैं, गिरी गिरी फेंक देती है, अरे आप छिलके खा रहे हैं। बिंद्र जी ने कहा कर क्या रही हो तुम, क्या दशा है, कपड़े पहनो, क्या कर रहे हो, विचार आया। अब बीच में हाथ धोकर केला धोकर साफ करके छिलका दूर करके केला दे रहे हैं, भगवान केला खा रहे हैं कि विदुर जी वो जो आनंद था वो रस तो इसमें नहीं है, अब छिलकों का रस कैसे हुए केले में ये नहीं है, ठाकुर जी कहते हैं छिलकों में जो रस आ रहा था वो जो मिठास था केलों में वो मिठास नहीं है, भगवान जीभ के तो गुलाम है ही नहीं, जीभ वो मीठा लगे अच्छा लगे, भगवान को तो उनका भाव प्यारा लगता है, होश नहीं कि मैं छिलका दे रही हूँ, घी दे रही हूँ, इसका होश नहीं, इतने प्रेम में वो पागल हो रही है, भगवान को वो मिठास आ रहा है, उसमें आनंद आ रहा है। विदुर जी बड़े भाव से थे, विदुर जी भी भक्त थे, कोई मामूली नहीं थे, भाव से दे रहे हैं। तो वो स्वाद नहीं आना, वो रस तो निराला ही था भाई, वो रसित्री था। ठाकुर जी भूखे हैं, विदुरानी ने सुना, अब वो कैसे सह सकती, ठाकुर जी भूखे हैं, लो बड़ा पालो बस। माताओं का सवा बच्चों को खिलाया पिलता करती, ऐसे प्यार से खिलाने लगे। वो भगवान को प्यारा लगता है तो पत्र पुष्प फल जल प्रेम से देता है, तो बस मैं तो पाई जाता हूँ। इस बात जो तू करे जो समय मेरे अर्पण कर दे, यत करोसी यदश्नासी यद जुहोसी ददासी यत यत तपस्या कौन थे तत्कुरु समर्पणम। जो तू काम करता है, धंधा करता है, जो कुछ खाता है, मन संसार का काम और खाना पीना ये सब क्रियाएं आ गई इसमें, और यज्ञ दान और तप तीन ही आ गई। जो करता सब मदर्पण मेरे अर्पण कर दे, बस भगवान के लिए करता हूँ, तो ठाकुर जी आपके लिए कर रहा हूँ, बस भोजन करे वो भी मेरे अर्पण कर, ठाकुर जी के अर्पण, ठाकुर जी के भोग लगा रहा हूँ, बस भगवान का काम कर रहा हूँ। बच्चा भी माँ को कहता है कि नहीं, एहसान करता है बच्चा, माँ गरज गरी दूध पी ले तो दूध पी कर एहसान करता, देख तेरे घर से दूध पी लिया, हाँ बेटा न्याल कर दिया पी लिया, देख बहुत अच्छा किया। ऐसे ठाकुर जी को निहाल करो, देखो महाराज आपका भोजन किया मैंने, आपका प्रसाद मैंने पाया है, देखो आपके घर में मैं रहता हूँ, ये आपके कपड़े में काम में लेता हूँ। भगवान कहा बेटा बहुत ठीक है, मैंने निहाल कर दिया मेरे को, कैसी मौज की बात है। अब बोलो कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, भक्ति में कौन सा परिश्रम ऐसा, आपका काम कर रहा हूँ मैं तो, स्नान आदि करते आपका काम, सब काम आपका ही तो है, घर का करूँ तो आपके, बाल बच्चों को पालन पोषण आपका, समाज का तो आपका, ठाकुर जी का काम है, ऐसे कर काम करो। शुभ शुभ फल ही नहीं, वो मोक्ष से कर्म बंधन ही, ये शुभ अशुभ जितने बंधन है सब मुक्त हो जाएंगे, सब छूट जाएंगे, सब से मुक्त हो जाओगे और मेरी प्राप्ति हो जाएगी, कैसी मौज की बात। भगवान कहते भैया मेरे पक्षपात नहीं है, मैं तो सम हूं, मैं प्रेम से मेरा कोई भजन करे, ये भजन दे तो माम भक्तिया मई ते सुताप्य हूं, वे मेरे मेरे मैं उनमें हूं, ऐसे सब पर मेरी कृपा, सब मेरे बाल बच्चे, परंतु प्रेम से मेरा भजन करे उसकी तो बात ही अलग है भाई, वो तो मेरे को बहुत प्यारा लगता है, बड़ा स्नेह आता है। अरे माँ के सभी बालक, मैं छोटा बालक तो माँ को छोड़े ही नहीं, गोदी में ही रह रहता हूँ, माँ के वियोग में रोने लग जाए तो कहते भाई इस छोरे को कैसे छोड़े, भाई बालक है छोटा है, जाओ तो साथ में ले जाओ, पास में रख बच्चा तुम्हारा, ऐसे भगवान बिना रह नहीं सके, तो भगवान राजी बहुत होते। माताओं को बच्चों के पालन करने में बड़ा परिश्रम होता है, परंतु बच्चा मर जाए तो रोती है कि बालक मर गया, अरे आप तो छूट गए, हर्ज क्या है तेरे, खूब मौज से रहे आराम से, वो आराम नहीं सुहाता, वो बच्चे की प्रतंत्रता बड़ी प्यारी लगती है, मीठी लगती है। ऐसे ठाकुर जी भक्तों का काम करते हैं और भक्त तो महाराज नचाते हैं नाचते हैं, उसमें ठाकुर जी को जो आनंद आता है वो स्वतंत्रता माना नहीं आता, भक्तों के काम करने में बहुत आनंद आता है, जैसे माँ को अपने बालक के काम करने में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है उससे बहुत ज्यादा, तो बालक पर ही तो उसकी रहती है भावना कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और ब्याह करूंगी और बहू आवेगी हुक्म चलाऊंगी, न जाने क्या क्या पूरा कर रहा भरा रहता है। भगवान ने कोई गर्ज नहीं कि बड़ा हो जाएगा और बहू आवेगी, कोई बात नहीं, ये तो ये ठीक रहे बस, इस वास्ते स्नेह आता भगवान, ये रिष्ट पुष्ट हो जाए, भगवान की भक्ति करके मस्त हो जाए, संसार में फंसे नहीं, ऐसी भक्ति हो जाए, केवल परमात्मा का प्रेम, उस प्रेम में बस मस्त हो जाए लबालब, उस मस्ती का महाराज भगवान को आनंद आता। दुनिया मात्र को आनंद देते भगवान, और भगवान को आनंद देता है भगवत भगत, भगवान का प्यारा, उसको देख करके भगवान जीते हैं महाराज, गदगद हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। महाभारत का प्रसंग देखो आप, एक दिन घटोत्कच था, उसने युद्ध किया है रात्रि में, ये हिडिंबासुर की बहन थी, हिडिंबा उसका बेटा था, भीमसेन का लड़का, बड़ा भयंकर युद्ध किया है, लोहे के बाण बड़े बड़े जोर से छोड़े, रात्रि के समय छक्के छुड़ा दिए महाराज कौरव सेना के। दुर्योधन ने कर्ण से कहा रे वो शक्ति छोड़ इसको, शक्ति को मैंने तो रखा है अर्जुन के लिए, कहते जीते बचोगे तो ये तो पहले चूर्ण कर देगा, इसको मारो। वो शक्ति निकाली महाराज घटोत्कच, वो आकाश में युद्ध कर रहा है, उसने देखा कि अब मौत आई, ये शक्ति तो अमोघ शक्ति है, जिस पर छोड़ दो खत्म कर दे उसको। तो उसने शरीर बढ़ाया, बड़ा भारी बनाया। तो शक्ति लगी पड़ा तो भागो भागो यहां से भागो, कहते कहते मेरा आदि चौथा सेना तो दब गई मर गई, कौरव सेना मरते मरते मार लिया। ऐसा वो वीर मर गया तो कौरव पांडव सेना में बड़ा शोक हुआ, हमारा बड़ा सूरवीर एक मारा गया। भगवान तो पीताम्बर को साथ करके राजी हो रहे, हंस रहे, खुश रहे, लोगों को ये क्या तमाशा है, हमारे पक्ष का इतना वीर मारा गया और भगवान खुशी हो रहे। जागर पूछा का महाराज क्या बात है कि मेरा अर्जुन बच गया। नहीं तो ये इसके पास शक्ति रहती, रातों जगता, चिंता रखता, जब जब युद्ध का काम पड़ता तो मैं अपनी माया से उसको मोहित रखता, उसको याद ना आ गया शक्ति कहीं चला नहीं दे अर्जुन पर, आज भय मिट गया। अब अर्जुन को मारने वाला कोई नहीं, विचार देखिए आप कितनी चिंता है भगवान की अर्जुन की, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो अपने भक्त का पालन करने भगवान को बड़ा आनंद आता है, बड़ा रस आता है। भक्त वो जानता ही नहीं क्या करते हैं ठाकुर जी, क्या नहीं करते। ऐसे भगवान को भक्त प्यारा बहुत लगता, और वो सतयुग त्रेता द्वापर के प्यारे लगते हैं, उनकी अपेक्षा कलयुग का भक्त प्यारा ज्यादा लगता है। और भाई अभी देखो सब चीजों के दाम बढ़ गए तो भगवत भक्ति के दाम कम हो गए क्या? सब चीजों के दाम बढ़े हैं तो जप करना, कीर्तन, सत्संग करना कितना इतना दाम है, कहाँ है ग्राहक आज? ग्राहक कम होते हैं ना तो चीज सस्ती मिलती है, तो भगवान सस्ते हो गए आजकल। अब बम्बई जैसे शहर में इतने से लोग, आप जरा विचार करो कहाँ है भगवान के ग्राहक, है वही है ही नहीं। उल फैल में, निकम्मे कामों में, सास निषिद्ध कामों में जुआ खेलेंगे, खेलेंगे, तमाशा करेंगे, हल्ला मचाएंगे, राजी हो रहे हैं, ऐसा आनंद कर रहे हैं, राम 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 राम। पागलों की वहां आग लग गई, कूदने लगे, आज देखो प्रकाश हो गया, आज तो सामना हो गयो, और सामना हो गयो सब। दिवाली आई है, लोगों ने दिवाली आई है तो बस इतना धन कमा लिया, इतना कर लिया, ऐसा बेबम है, इतना भोग भोग लेंगे, इतना ब्याह कर लेंगे, इतना यूं कर लेंगे, बस इसमें राजी हो गए। विधवा ब्याह कर दो जो राजी हो जाए खूब। अरे कर क्या रहे हो भाई, आग क्या लगा रहे हो, ये धर्म से विरुद्ध काम क्यों कर रहे हो? मैं अधर्मम धर्ममिति आत्म तमसावृता सर्वार्थान विपरीता से बुद्धि सापार्थता। अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता, तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को तो धर्म मानते, धर्म को अधर्म मानते, उल्टी बुद्धि होगी, उल्टी ऊंधी बुद्धि होगी। सर्वार्थान विपरीता से भजन स्मरण जप करना ये नहीं, बस अंडा है, मछली है, मांस है, ये खाओ सब, बस बस इसका प्रचार करो, सब लोग ऐसे ही खाने लग जाए, सबके साथ खाने लग जाए, धर्म क्या होता है, छुआछूत क्या होती है, झूठन क्या होता है, अशुद्धि क्या होती है, जयराम जी की सब। अरे तस्मात शास्त्रम प्रमाणम दे कार्या कार्य व्यवस्था, गीता ने तो कहा कि शास्त्र को प्रमाण सामने रखो, कि शास्त्र वाले सब खराब, ये ब्राह्मण सब खराब। आसाम में जाने का काम पड़ा कई वर्ष पहले, तो वहां एक भाई ने प्रश्न किया, कि महाराज देखो किसी पर घृणा करना खराब है, अच्छा है, बड़ा बड़ा खराब है, घृणा करनी नहीं चाहिए, पर किसी मनुष्य पर क्या, पशु पक्षी पर भी घृणा नहीं करनी चाहिए। तो देखो आपके ये सेवक है ना, आपके ये ये घृणा करते हैं समारोह पर, मैत्रों पर, अर्जुनों पर घृणा करते हैं, तो पाप करते हैं, घृणा नहीं करनी चाहिए। घृणा किसको कहते हैं? घृणा खराब है, खराब ऐसा मानो खराब घृणा होती है। छुआछूत रखना तो शुद्धि है, पवित्रता है, निर्मलता है, घृणा नहीं। मन में घृणा कर, तिरस्कार करे, अपमान करे, वो पाप होता है, नहीं करना चाहिए। ये तो हमारे पक्ष में बोलते हैं भाई, घृणा तो करनी नहीं चाहिए, चुप हो गए। मैंने कहा भाई घृणा करना तो खराब, परंतु एक तो घृणा करे हरिजन से और एक घृणा करे ऋषि मुनियों से। पहले ऋषि ने जो पक्षपात किया, उन्होंने ब्राह्मणों को ऊंचा बढ़ा दिया, पुरुषों को बढ़ा दिया, स्त्रियों को गिरा दिया, इन बेचारे गरीबों को गिरा दिया कि तुम्हारे प्रारब्ध नहीं है, बस उनके ऐसे ब्राह्मणों ने बड़ा काम खराब किया, तो घृणा हुई ब्राह्मणों की। अब घृणा दोनों खराब, ज्यादा खराब कौन सी बताओ? अब शास्त्रों की घृणा, संतों की घृणा, ऋषि मुनियों की घृणा, उनकी निंदा, ये ठीक नहीं करते। ये ठीक ठीक का जमाना अब आई आ फसल, अब ठीक आप समझने लगे। ऋषि मुनि तो समझते ही नहीं, वे तो सफाई ऐसे ही। अगर वे पक्षपाती होते तो उनका दर्जा ऊंचा कभी नहीं होता। त्यागी थे, तपस्वी थे, दुनिया मात्र के हित के लिए उन्होंने शास्त्र बनाए। आज भी पीएसबी मिलती है क्या उनको पदवी? विशास क्यों बनाए थे? वही तो हो जाए, हृदय में कृपा भरी रही है, भरी है कृपा। एकांत में रहकर, जंगलों में रहकर अनुभव करते, बड़ा गहरा सिर लिख करके दुनिया को बता देते, भाई ये चीज हमें मिली है, कितनी कृपा है उनकी। ऐसे ऋषि मुनियों की घृणा करनी, उनकी निंदा करनी, उनका तिरस्कार करना, उन पुस्तकों को नहीं पढ़ना, महान काला दिन है, महान पतन की बात। अरे गीता रामायण तो पढ़ो कम से कम, देखो तो सही कितनी विचित्र बातें लिखी है, कितने हमारे उद्धार की, दुनिया के सुधार की कैसी बातें लिखी है, पढ़ने को नहीं देखें। ऊंधी बात चलेगी, ऊंधी उल्टी। दिन कल युग महाराज आपने लीला जब दिखाई है, उलटा चलन चला दुनिया में, सबकी मती बोराई है। विधवा लग गई पान चाबण है, देसुरमा मुस्काई है, नित करती श्रृंगार, देख कर स्वागर भी शर्माई है। ये दशा हो गई। फागे करते संत मिले, भड़ुओं को दूध मलाई है। गणित कल युग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, अजब लीला, उल्टा चलन चला दुनिया। तो ये दशा हो रही है भाई, ऐसे समय में कोई बच जा तो बड़ा अच्छा। ठंडी आती है तो निगाह रखते रखते भूल में कपड़ा गिर जाए, हो तो जड़ लग जाए। ऐसे हवा और विचित्र चल रही है, अच्छे अच्छे घरानों में जगह वैष्णव घर है, पीढ़ियों से वैष्णवता आ रही है, उनमें छोरों की हवा लग गई, खान पान में भ्रष्ट हो गए, छोरा छोरियों में आपस में करने लग गए, क्या क्या उल्टा उल्टा काम करने लग गए। हवा लग गई भाई आजकल, क्या किया? इस बात से बड़े सावधान रहो, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। पहले जमाने की अपेक्षा सावधान अधिक होने की आवश्यकता है अभी। इस बात तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते, और इस रखो भगवान का, परमात्मा की तरफ। तो योगी नाम सर्वेशाप, वो हिसाब करो तो छठा अध्याय, सातवां अध्याय, आठवां और नौवां अध्याय के चौथी सब कितने हुए? 98 हुए, और 11 श्लोक दसवें अध्याय के, 109। अब भगवान बोलते हुए अर्जुन बोलते, अर्जुन वाच है परम ब्रह्म परम धाम, यहां बोला 109 श्लोक कहते गए लगातार, किसी विषय पर इतना भगवान नहीं बोले। तो भगवान को भक्त बहुत प्यारे लगते हैं, वही बात आ जाए ना तो भक्तों की भी भगवान की बात आ जाती तो बस भजन में लग जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। नरसिंह जी महाराज के बाप का श्राद्ध आ गया तो सुबह वहां से पहुंचे, अब करे कहा से, घर में कुछ है नहीं। नरसिंह जी घर में तो चूहे होड़ मारे, दाना मिल जाए तो तेरे में होड़ है। अब श्राद्ध कहां से किया जाए? तो महाराज बर्तन लेकर पहुंचे वहां दुकान पर और कहा भैया थोड़ा सौदा दे दो, हमारे पिता का श्राद्ध करना है, उधार दे दो। वो समझ रहे उधार अब क्या खेती है व्यापार है, किस पर सुखाएगा ये? किसी उम्मीद पर देता है ना उधार, तो यूं आ जाएगा। तो सेठ ने कहा कि सेठ देखो भाई इधर से उधार तो क्या दें, तुम्हारे को ऐसे ही दे देंगे, तुम हमें कीर्तन सुनाओ, भगवान का पद सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, दे देंगे। तो ब्राह्मण थे ही बैठ गए कीर्तन सुनाने के लिए, मस्जिद सुनाते गए, बाजार में लोग इकट्ठे हो गए, भूल गए श्राद्ध की बात। दोपहर में हो गया, शाम होने लगी, अरे कीर्तन फिर गया, भजन करने बैठे। ठाकुर जी ने देखा कि ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है, भी आएंगे तो क्या होगा। उद्धव जी को उद्धव चलो भैया, नरसिंह जी के पिता का श्राद्ध करना है। नरसिंह से सगा सो तो अपना सगा, तो नरसिंह के बाप से अपना बाप हो गया, चलो करो भाई। पहुंचे वहां नरसिंह का रूप धारण करके, और एक ब्राह्मण था अपना घर उसके पास पहुंचा के हमारे से लोग नहीं, तेरे भाई का वहां आया है निमंत्रण, समझे भाई को कुछ देगा बाबा जी क्या पढ़ा देने में, हम तो वहां जाएंगे, तो तुम लिख दो कि नरसिंह तुम्हारा हमारा काम नहीं, हम दूसरा गुरु बना हमारे कोई और में किसी यजमान तो पढ़ेंगे। लिख दिया पढ़ा क्या है। तो एक खेत जा रहा था, उस ब्राह्मण को कहा महाराज चलो हमारे पिताजी का श्राद्ध है। तो भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं, उन्हें आप पढ़ो आप चलो दक्षिणा दूंगा चलो। तो ठीक है भाई अपनी क्या अर्ज है, चला गया। महाराज भगवान से पूजा है, बड़ा बढ़िया मंत्रों से महाराज श्राद्ध की विधि कराई, पिंड दया तर्पण कराया, सब विधि विधान से सब काम हुआ। मोहरें दे दी 510। अब देखा उस ब्राह्मण ने सुना कि मोहरें दी नहीं है, अब भाई कितना कहां था देने को था, अब ये वो बेचारा चला। अब वो तो विदा किए और सब आए, सबको भोजन कराया, सबको भोजन करा गुरु के शाम तक सबको विदा किए। अब नरसिंह जी पहुंचे घी और आटा लेकर के, जाकर अपने धर्म पत्नी से कहा लो बनाओ रसोई बनाओ। कहेगी कि साथ है कहते ब्राह्मण तो भोजन कर चले गए, आपने भोजन किया, मैं तो भोजन करने को बैठी हूं, तुम भोजन करती हो, साधु साधु तो हो गया महाराज, इतने ब्राह्मण देखो ना पतला कितनी बड़ी, ब्राह्मण सब जीम गए, सब भोजन कर गए, अरे आप भोजन कर गए पीछे आए हो आप। ना मैं तो नहीं आया, मैं तो सुबह गया था सामान लेने, अब आया हूं। ठाकुर जी कर गए सभी, फिर पता लगा वे तुम भाग्यशाली नहीं हो जो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो भगवान को भगत का काम करने में आनंद बहुत आता है, बड़े प्रसन्न होते हैं, गंगा करके पिता बन करके पुत्र बन करके पिता बना करके उनके पिता को पिता बना करके श्राद्ध तर्पण का शुरू कर दिए। तो भगतों का काम करने में भगवान को आनंद आता, क्यों कि भक्त को भगवान का भजन करने में आनंद आता। तो ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। तो अब भक्तों की बात कहने लगे तो भगवान कहते ही चले गए, कहते ही चले गए। और अर्जुन पुत्र ने असर पड़ा, वो तो पूछता काम गति कृष्ण गति पूछता, अब परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभम आहु स्वाम ऋषय सर्वे देव ऋषि नारद सता अशितो देवलो व्यास स्वयं सेव ऋषमे सर्व में तो दृदंग बने यम वेश। सब सच्ची बात नहीं थे भगवान व्यक्ति विदुर देवानंदान, आपके प्रकट होने को न देवता जानते न दानव जानते, कोई नहीं जानते, आप तो कैसे विलक्षण हो। अब स्तुति करने लग गए, अर्जुन पर भी असर पड़ा इस भक्ति का वर्णन का। कितनी विचित्रता से भगवान ने भक्ति वर्णन कर दी, कितना लंबा प्रकरण का है, कोई भी इतना लंबा प्रकरण नहीं मिलेगा। 18वें अध्याय में 71 श्लोक मिलते हैं भगवान के लगातार कहे हुए, पर इतने नहीं है। इसमें बीच में अर्जुन बोला है, पर पाठ बीचा वही अंतकाल में कैसे जानता है। तो एक तो अंतकाल की बात और एक भगवत भक्ति की। 12वें अध्याय के आरंभ में ऐसे सगुण भक्त है और निर्गुण आपके उपासक, उनमें श्रेष्ठ कौन से, तो इस विषय बोलते गए। तो अब 12वें अध्याय के 20 श्लोक है, तो एक तो अर्जुन को हो गया, अब कितने रहे 19, तो ये रहे इसके बाद आया 13वां अध्याय, उसे 34 हुए, 53 हो गया, 13वां आया, अब 14वें अध्याय की 21, 73 श्लोक यहां बोले बताओ, 75 कितने हो ये देख लो। जहां अंतकाल की गति है उसमें भी से बोले, और महाराज साधन कौन सा बढ़िया है इसमें इतने बोले, इतने संन्यास त्याग के विषय में 18वें बोले। तो भगवान का क्या आशय है, जीव जितने भजन करो और अंत में मेरी याद करो, मुक्ति करो, इस बात में इस विशेष लक्ष्य गीता का। ये दो विषय जितना आया इतना विषय कोई नहीं आया गीता में, इसे पता लगता कि भगवान के मन में क्या है, उनके भाव का पता लगता है। ज्यादा बोलते हैं जिस विषय पर रुचि उसी पर ज्यादा बोलेंगे, तो भगवान की ये बात है। तो अपने भी भगवान का भजन करो, ये सब सार बात है। नारायण 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 गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हो
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे
नाथ नारायण वासुदेवा,
विशेष विशेष बातें आती है, परंतु भगवान का और भगवत भक्ति का वर्णन गीता में विशेषता से आया। स्वास्थ्य कहा ना हम वेदे न तपसा न दाने न तीज्या शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवान सीमां यथा। भगवान कहते हैं तैने मेरा जैसा स्वरूप देखा है, जिस प्रकार से ना हम वेदेर वेदों के द्वारा भी ऐसा नहीं देखा जा सकता, न तपसा बहुत तपस्या करने से भी ऐसा रूप मैं देखा नहीं सकता, न दानेन बहुत कुछ दान करते उस दान के द्वारा भी ऐसा रूप नहीं देखा जा सकता, नसीज या यज्ञों के द्वारा भी। तो किसने देखे जाते हैं तो कहे भक्तिया त्वनन्यया शक्य अहम एवं विदोजन, भक्तिया और अनन्यया अनन्य भक्ति होनी चाहिए, उससे ऐसा मैं देखा जा सकता हूं, तत्व से जाना जा सकता हूं और प्राप्त किया जा सकता हूं। तो ये महिमा अनन्य भक्ति की है, अनन्य भक्ति का अर्थ होता है अन्य की भक्ति न हो, एक भक्ति हो भगवान की। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, एक परमात्मा के चरणों की भक्ति हो, भीतर जो आदत है मन का खिंचाव है एक आदर है वो एक परमात्मा में ही हो, ऐसी भक्ति से मैं देखा जा सकता हूं, तत्व से जाना जा सकता हूं और प्राप्त किया जा सकता हूं। तो भक्ति क्या है तो पिछवें श्लोक में भगवान ने बताया, ग्यारहवें अध्याय का अंतिम श्लोक है, 55 संख्या। तो 55 में 5 बातें कही है, 55 की संख्या होती है इसमें 5-5 ऐसी संख्या होती, तो 5 साधनों को साधन पंचक कहते हैं, 5 साधन बताए। उसके 2 विभाग है, 3 एक विभाग है, 2 का एक विभाग है, मत कर्म कर मत परमो मत भक्त ये एक विभाग और संघवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु एक ये विभाग यह समामेति पांडव ये उसका फल है वो मेरे को प्राप्त होता है मेरे को प्राप्त होता है इसमें अभी तीनों बातें आ गई मैं देखा जा सकता हूं तत्व से जाना जा सकता हूं प्राप्त किया जा सकता हूं तो अनन्य भक्ति का तात्पर्य क्या हुआ कि मत कर्म कर मत परम मत भक्त ये होना चाहिए और संग वर्जिता निर्वैर आसक्ति और वैर का त्याग होना चाहिए तो पांच साधनों के दो विभाग हुए परमात्मा की तरफ लगना और नाशवान की तरफ से हटना ये दो बातें खास है ज्ञान योग में परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है उसको समझना है भक्ति योग में भगवान की तरफ ही केवल लगना है और कर्मयोग में जो कुछ हमारे पास संसार की चीज है वो उसकी सेवा में ही लगा देना है तीनों का नतीजा एक ही निकलेगा जड़ का परित्याग होगा तन्मयता की प्राप्ति हो जाएगी तो प्राप्ति के लिए बताया कि मत कर्म कृत मेरे लिए ही काम करें ध्यान देना है इस बात पर मत कर्म कृत मानो मेरे लिए कर्म करने वाला हो जाए केवल मेरे लिए काम करे जैसे लोभी धन के लिए काम करता है मोही जैसे अपने परिवार के लिए काम करता है ऐसे विद्यार्थी जैसे पढ़ाई के लिए करता है तो मत कर्म कृत मेरे लिए काम करे सभी तो ये लोभी होता है वो धन के लिए काम क्यों करता है लोभी है नहीं उसकी जो अहंता है मैंपन है उस मैंपन में धन का लोभ भरा हुआ है उस मैंपन जो भाव भर दिया जाए तो उसके लिए वैसे करना नहीं पड़ता स्वतः ही होने लगता है जैसे भाई बहन अपने को ग्रस्त मानते हैं तो गृहस्थ का काम करना स्वतः ही मानते हैं स्वाभाविक घर का काम तो करना है ही रात में दिन में सुबह शाम कभी जब कभी समय पड़े तो काम करना ही है जो हम गृहस्थ हैं तो ये बात बड़ी सार है कि इस अहंता को बदल दिया जाए इस मैंपन को बदल जाए फिर सब बदल जाएगा क्योंकि तो मैंपन ही मालिक है मालिक बदल गया तो सब बदल गया ये जो शिकायत आती है कि हमारा मन नहीं लगता तो उसका कारण मुख्य ये है कि अपने को भगवान में नहीं लगाते अपने को तो गृहस्थ में लगाते हैं मैं तो गृहस्थ हूं और मन को भगवान में लगाते हैं तो मन लगता नहीं अपने को अगर भगवान में लगा दिया जाए तो मन स्वतः ही भगवान में लग जाएगा जहां इसकी स्वतः स्थिति होती है वहां मान बुद्धि इंद्रियां, क्रिया पदार्थ परिवार सब लग जाता जो अपना कहलाने वाला है वो सब का सब अपने लगने से लग जाता है तो अपने को परमात्मा कृत मत कर्म कृत केवल भगवान के लिए ही काम करे सब भगवान का ही काम करते हम और क्या है खाना पीना भी यत करोश यदस्नाश यद जुहोश दास यद तपस्या से तो यज्ञ दान तप इसके साथ जो काम करते हैं वो और यदस्नाशी भोजन करे तो भी तत्पुरुष मद अर्पणम भगवान की अर्पण करे भगवान का ही काम है सांसारिक काम करना हो व्यापार करना हो नौकरी करना हो खेती करना हो शिक्षा देना हो जो कुछ काम करना है मत कर्म कर भगवान के लिए काम करो उद्देश्य ये बड़ा ले यहां से उठकर जावे तो भगवान के लिए जा रहे हैं, भगवान के दरबार में जा रहे हैं। बैठे तो उठे तो सोवे तो भगवान का ही काम करते हैं भाई, सोते हैं तो ही भगवान का ही काम करते हैं। ऐसे भगवान का काम करे सब। और मत परमा दूसरी बात है, भगवान ही सर्वोपरि हो, परम उत्कृष्ट सर्वथा परमात्मा ही है। अनु काम करते हैं वहां विद्या अध्ययन करता है तो विद्या पढ़ने के लिए, विद्वान बनने के लिए, धन कमाता है तो धनी बनने के लिए। ऐसे कोई न कोई काम करता है तो अगाड़ी परायणता होती है, भगवान का काम करे भगवान के ही परायण। संसार के साथ में घुल मिल जाना है ना, ये अनन्य भक्ति में बाधक है। थोड़ा भी इधर लग जाता है तो उतना अंश तो हट गया ना। तो संग वर्जिता संग न हो, संग सर्वात्मना त्याज्य, तो सर्वथा ही छोड़ने के लायक है। क्यों? कारण गुण संगो से सदा सद्योनि जन्म सु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। जहां संग होगा वहीं जन्म होगा। तो संग वर्जिता मद भक्तर संग वर्जिता हो, प्रेम परमात्मा में हो संसार में नहीं। तो संग किसका न हो कि जो विनाशी है, उत्पत्ति विनाशील है, उसमें संग नहीं। और निर्वैर सर्वभूतेषु किसी प्राणी के साथ किंचित मात्र भी बैर न रहे। थोड़ा भी द्वेष हो जाएगा तो उसके साथ संबंध जुड़ जाएगा। ये राग और द्वेष दोनों ही संबंध जोड़ने वाले हैं। अनन्य भक्ति कहने का मतलब और के साथ संबंध न हो। तो और के साथ संबंध कैसे जुड़ता है कि राग से और बैर से। भगवान श्री राम अवतार लेकर पधारे, उनके साथ प्रेम किया, स्नेह किया, उनका भी कल्याण हो गया। और बैर रखा मारने के उद्देश्य हुए, उनका भी कल्याण हो गया। पर जिनका ना स्नेह है ना बैर है, उनके कल्याण की बात नहीं आती, क्योंकि संबंध नहीं जुड़ता। इससे संबंध जुड़ता है। तो संसार के साथ संबंध स्थूल रीति से देखा जाता है कि कुटुंब में बैठे हैं इस वास्ते हमारे तो क्या करें, ग्रस्त हैं। देखो बैठने मात्र रहने मात्र से आप ग्रस्त नहीं हैं, रहने मात्र से ग्रस्त नहीं। जिस तरह से नौका होती है वो नदी में रहती है, तालाब में रहती है, जल में रहती है, और नदी से इस पार से तो उस पार कर दे, उस पार से इस पार कर दे, रहती जल में ही है पर जल से पार कर देती है। परंतु कब? कि नौका तो जल में रहे पर नौका में जल न रहे, तब पार करती है। अगर नौका में पानी भर जाए तो वो दूसरों को क्या पार करे, खुद डूब जाती है। ऐसे संसार में आप रहे परंतु आप में संसार न रहे। आप में अगर संसार रहेगा तो वो डुबो देगा, तो अपने में संसार का रहना क्या? जो संग और बैर ये दोनों में से कोई चीज कर ले तो वहां पर फंस जाएंगे हम। निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात्मुच्यते, जो निर्द्वंद्व होता है वो सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। इस वास्ते भगवान कहते हैं ये ऐसा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। पांचवें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहते हैं कि उसको नित्य ही सन्यासी मानना चाहिए।
ध्यान देना, लोग समझते हैं भाई गृहस्थ है, हम तो गृहस्थ में बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं कहीं बैठो और कहीं रहो, ये ऐसा नित्य सन्यासी, वो नित्य ही सन्यासी जानना चाहिए, सन्यासी ही है वो। कौन के यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न किसी से द्वेष करता है न किसी की इच्छा करता है, काम धंधा सबका करता है, सब कुछ करता है, परंतु राग और द्वेष नहीं है, हर्ष और शोक नहीं है, किसी से बैर और प्रेम नहीं है, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धनी, नहीं किसी की बैर, ऐसे निर्लय पर है। अगर ही पांच में कहा ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, आसक्ति का त्याग करके भगवान के अर्पण कर्म करता है, लिप्यते न स पापे न, वो पाप से लिप्त नहीं होता। कैसे कि पद्म पत्र मिवांबसा, जैसे कमल का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता, कमल पैदा होता है जड़ में और रहता भी जल में है, परंतु उसका पत्ता जल में भिजता नहीं, पानी की बूंद भी पड़ जा तो मोती की तरह इधर लुढ़कती दिखेगी, उसमें भेदन नहीं होगा। इस तरह से संसार में रहते हुए निर्लेप रहे, कुछ निर्लेप कैसे रहे, अरे फिर ठीक तरह से जाने तो निर्लेप तो स्वतः है, पहले आप थे नहीं फिर रहेंगे नहीं, तो बीच में कैसे लिप्त हो जाएंगे। जैसे आप यहां सुनने के लिए आए, तो सुनने के लिए आए जितने तक सुनाना है सुनाना बंद होते चल जाएंगे, तो क्या घर जाने पर ये याद आता है कि वहां कैसे है, वो बिछौना कहाँ रखा है, बत्ती की क्या व्यवस्था है, माइक कहाँ रखा है, ऐसी कुछ चिंता होती है? नहीं होती, क्योंकि हम तो आए हैं और चले जाते हैं भाई, यहां रहने वाले थोड़े ही हैं। ऐसे इस संसार में आप आए हैं और चले जाएंगे, सच्ची बात है, तो लिप्तता कैसी? परंतु यहां रहते हुए काम ठीक तरह से करें, अपनी जगह बैठे और से भी प्यार पूर्वक कहे, स्नेह पूर्वक आदर पूर्वक, भाई यहां बैठो, ऐसे चलो, काम धंधा हो तो यहां कर दे, परंतु अपनापन न रखे। सत्संग का संबंध है, ऐसे हम संसार में आए तो भगवान का हमारा संबंध है, भगवान के लिए आए हैं, कुटुंब का पालन करना है तो भगवान का करना है। नरसिंह जी महाराज ने नानी बाई का माहिरा भरा, सबको कपड़ा दिया, खूब दिया। अब महाराज एक नानी बाई के पड़ोसन थी, प्रेम लिया सब नाम लिखा प्रेमी, उसने कह दिया काहे का माहिरा भरा, कल एक छोरी जन्मी उसका तो कपड़ा आया ही नहीं, काहे का मारा भरा। ऐसे कर निंदा करे और नानी भाई को सुनावे ताना मारे, तो नानी भाई गई महाराज नरसिंह जी के पास, कहते महाराज एक कपड़ा एक छोरी को नहीं मिला, इस वास्ते वो क्या करे, वो तो कपड़ा आपके नया माहिरा भरा वो नहीं जैसा हो गया। और पाई एक तिशाई, एक को तो नहीं मिला ना कुछ भी। नरसिंह जी ने कहा कि भाई ठाकुर जी तो पधार गए माहिरा भर करके, अब नरसिंह जी क्या दे क्या करे, वो तो बाबा जी की जात, बस करताल बजावे कीर्तन करे अपना, क्या करे। तो नानी बाई ने कहा कि एक छोटे से कपड़े के बिना मेरी तो शर्म जा रही है, जाती दिखे लाज। तो नरसिंह जी ने कहा ले भाई ये करताल लिखा और दुकानदार की यहां धर दे और कपड़ा ला कर दे दे। तो कपड़ा ला दे दिया, सा करताल धर दी। अब नरसिंह जी ताली बजावे कीर्तन करे और भगवान से कहे कि महाराज ये ताल बजाओ तो गाओ तो रिझाओ तो गोपाल आपको रिझाता गाता था और करताल भी ना तो करियो मारो द्वार करो नाथ मेरे करताल भी ना करो और बोले क्या मायरो तो भरियो थारी बेटी रो भरियो करताल बिना तो मोता नरसिंह ने करियो बताओ मायरा भरा तो तेरी बेटी है उसे भर दिया मेरे पर क्या ऐसा मगर करताल तो मेरी ले जा रहा 56 करोड़ का मायरा भरा उसका कोई असर नहीं और करताल ले गए जिसका बड़ा असर मेरी करताल ले गए तो भगवान ने कहा अच्छी बात है भाई थोड़ो कपड़ो बरसा दे ऊपर से तो ठीक हो जाए तो भगवान ने कपड़े की वर्षा करी गांठों आकर गिरने लगी और एक मकान गिरने लग गया गांठ की गांठ ऊपर से पड़े हुए बड़ी मुश्किल हुई लोग त्राय त्राय करने लगे नरसिंह जी से कहा कि महाराज ये वर्षा बंद करो नहीं तो ये नगर हजार तो डट जाएगा सबका सब खत्म और मनुष्य मर जाएगा सब तो भगवान ने प्रार्थना करी कि महाराज बंद करो तो भगवत भगत होता है उसकी ये ममता नहीं कि मेरी नानी बाई का मायरा भरा ये तो तेरी बाई है बस हम क्या करें मायर तो भरियो थारी बेटी तो भरियो बताओ तो नरसिंह जी अपनी बेटी नहीं मानते ये ठाकुर जी की बेटी है सब परिवार ठाकुर जी का है फिर काम धंधा किसका भी ठाकुर जी का अपना कुछ नहीं मत कर्म कर मत परम श्रेष्ठ भगवान है मत भक्त प्रेम भगवान में संसार के साथ ना राग है ना द्वेष स्वास्थ्य नित्य सन्यासी ये जैसा नित्य सन्यासी यो ना द्वेष निकांक्षती ऐसे निर्वैर सर्वभूतेषु भक्त्या तनन्य आशक्य तो सज्जनों भगवान के साथ एक संबंध रखो क्योंकि भगवान के साथ ही संबंध पहले से था ममी वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन अनादिकाल से संबंध हमारा प्रभु के साथ ही है यहां तो संबंध बनाया है थोड़े वर्षों से जितने आप बैठे हैं भाई बहन सोचे आज से 100 वर्ष पहले आपका ये कुटुंब आपके शरीर ये थे क्या 100 वर्ष पहले अच्छा 100 वर्ष के बाद में ये कुटुंब रे धन संपत्ति पे मकान परिवार रहेगा कहते नहीं तो पहले नहीं कुछ नहीं बीच में कैसे हो गए भाई आदावंत जी अन्नास्ती वर्तमान ये भी तत्व था जो आदि में नहीं अंत में नहीं तो वर्तमान में कैसे तो कह दिखता है ना दिखता तो सेवा करो ठाकुर जी का काम करो ठाकुर जी का घर है ठाकुर जी का परिवार है इसका काम धंधा करना ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नरसिंह जी काम करते हैं ठाकुर जी का इस वास्ते उलाना भी ठाकुर जी को देते हैं मेरी करताल चलेगी तेरा काम किया हमने तो हमारे क्या काम तो ठाकुर जी का सब समझने से मतलब इतना निर्धक हो जाता है इतना निस्संग हो जाता है इतना वो निर्भय हो जाता है जैसे दुनिया मात्र के काम होते हैं हमारी चिंता नहीं होती ऐसे हमारी चिंता नहीं होती घर के काम की भी घर का काम हमारे है ही नहीं कई वर्षों पहले एक जगह पूछा था मेरे से कि हम घर का काम करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं तो मैंने उत्तर यही दिया कि आज से कभी घर का काम करना ही नहीं अंजन कहा आंख से ही फूटे जिससे आंख फूट जाए वो अंजन क्या काम का वो उस अंजन का क्या करे बहुत बढ़िया अंजन है सर बस डालो फूट जाएगी आंख ऐसे घर का काम जब मैंने भगवान को भूल जाए क्या करें, तो नियमित कर लो आज से, अब घर का काम नहीं करेंगे, अपने घर का काम करेंगे ही नहीं। तो अपने घर का काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे रोटी मिलेगी, कैसे काम चलेगा, कितने चलो समझो सब। भगवान के भजन में बाधा हो जाए वो अपने घर का काम तो करेंगे ही नहीं, तो फिर हाथ पर हाथ धर बैठ जाए सबके सभी, कैसे संसार का संचालन होगा। कहते ये तात्पर्य नहीं है, अपने घर का काम नहीं करे तो कुछ करे, ठाकुर जी घर का काम करे, अर्थात घर को अपना न माने ठाकुर जी का माने, परिवार को ठाकुर जी का माने, चीज वस्तु को भगवान की माने। कि भगवान कैसे माने, हमारी है तो आपसे पूछे आप साथ लाए थे क्या, नहीं लाए, नंग धड़ंग गर्मे थे, और जाओ तो ले जाओगे क्या, जितने हमारे सामने जाते हैं उस लाश भी पड़ी जाती है, साथ में कुछ नहीं ले जाते, तो आपके हमारे कोई नई रीत हो जाएगी क्या, साथ ले जाएगी तो ले जा भी नहीं सकते, रहते हुए कि मन के मुताबिक सबको रख लेंगे बना लेंगे क्या, क्या बदल देंगे, रहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ये हमारा कैसा, तो भी हमारा दिखता है ना, अरे हमारा दिखता काम करने के लिए, ठाकुर जी का सब परिवार, ठाकुर जी की संपत्ति, ठाकुर जी का काम, ठाकुर जी का काम कर दो, कब तक के जस रखे जिन उतना दिन काम कर दो, जिस दिन चलो के चलो, अपना तो कोई काम है ही नहीं है, आपको जितना रखना हो काम कराना हो करो। ये बात अगर सीख जाए तो कितनी मौज रहे, कोई कैसे ही हो, अपने मतलब क्या भाई, अपने तो सेवा करना है, अपने पास जो कहलाना तन है मन है धन है विद्या बुद्धि जो कुछ है उससे सबको सुख पहुंचाना है, हमें तो यहां से लेना नहीं है, यहां से जाना है, ये जाने वाला वो लोग है, रहने वाला वो लोग नहीं है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, साई रहने वाला ही, सब जाने ही जाने वाले इकट्ठे हुए, सभी जो मुसाफिर खाना होता है उसमें जैसे लोग इकट्ठे होते हैं, अपने अपने समय पर आ गए, अपने अपने समय पर लोग चल दिए, वहां रहने वाला कोई नहीं, ऐसे ये दुनिया है सबकी सब। इस दुनिया में एक वृक्ष पर पंछी करत बसेरा है, सांझ परे से सब मिल जावे बिछुरत होत सवेरा है, सुबह उड़ जाएंगे ऐसे ही भाई, एक ठोड़ इकट्ठे हो गए एक परिवार में, वो एक वृक्ष पर आ गए, चार घड़ी के रहने का सर करते मेरा है ऐसी बात, वो मन में न लावे तेरा बस बस गया बडेरा है। बड़े बड़े बुद्धिमान समझदार रह रह करके चले गए। सज्जनों इस बातों को आप ऐसी न समझेंगे व्याख्यान की बात है कथा की बात है, पर सुन लिया बात को समझो, यहां रहो जो उत्तम से उत्तम बर्ताव करो, सेवा करो, क्योंकि सेवा बार बार मिलेगी नहीं, अवसर है ये। भले आदमी जाते हैं तीर्थ यात्रा में तो जहां रात्रि को ठहरते हैं वहां कई भी सेवा वृत्ति सृजन होते हैं, वृद्ध माताएं हैं वृद्ध पुरुष है बेचारे चलते चलते थक जाते हैं, वहां ठहर गए नींद आ गई लेट गए, सेवा करने वाले जाते हैं चट ले आते हैं लकड़ी लाओ भाई कोयला लाओ आग सुलगाओ रसोई बनाओ भोजन कराओ सब रसोई बना बनो करे ला भोजन कर लो उठाते हैं आप बोलो भोजन करो ये तैयार सा भोजन करो जल तैयार प्रसाद पाओ ठाकुर जी का प्रसाद कोई पा लेते। जैसे हम तीर्थ यात्रा में जावे तो इस तरह से हम उद्योग करें, इस तरह से घर में रहते हुए उद्योग करें पुरुषार्थ करें, और ये ठाकुर जी गए हैं सबके सब, ऐसा कर भोजन कराओ और धंधा कर दो सेवा कर दो। सेवा करने से आदमी बंधता नहीं है, क्योंकि ये बहम है कि गृहस्थ में रहते हुए बंध जाए तो हम साधु बाबा बन जाए तो खुल जाएंगे, गृहस्थ में बंध जाते हैं। बंधन का कारण गृहस्थ नहीं है, उनसे सुख लेने की इच्छा है, सुख लेने की। ये लेने की इच्छा बाबा जी बन जाओ तो बंध जाओगे महाराज, साधु बन गए पर लेने की इच्छा है। हमारे साथ स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, आदर करते हैं, दे देंगे, निहाल कर देंगे, ऐसे भाव से संबंध जोड़ोगे तो भाई साधु होने पर भी फंस जाओगे। घाटा लगे किसी गृहस्थ के, रोवे बाबा जी बैठे बैठे, घर में किसी के वो मर जाए बाबा जी रोवे कि हमारा भगत था ये, तो क्योंकि हमारा माना फंस गए, लेना चाह और फंसा, संसार से लेने की इच्छा न रही। कैसे काम कैसे चलेगा कि लेने की इच्छा से काम नहीं चलता है, वस्तुओं से तो काम चलता है परंतु लेने की इच्छा से काम नहीं चलता है। कि लेने की इच्छा में कैसे लेगा कि लेने की इच्छा वाले को देने वाले इच्छा नहीं करेंगे देने की, जो नहीं लेना चाहेगी जो देंगे खूब मौज से बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी प्रसन्नता रहेगी। गृहस्थ में रहते हुए भी काम धंधा करो, सेवा करो, लेने की इच्छा मत रखो कि हमारा हुक्म बजावे, हमारा कहना करे, हमारी सेवा करे, हमारे उदय दे। अरे इच्छा रखता है और वो लोग सेवा करते हैं तो उनका सेवक उनका गुलाम बनना पड़ेगा, सेवा करने वाले का भजन करना पड़ता है महाराज, याद आती है उसी। तो सेवा करने वाले बनो, लेने की इच्छा नहीं, उसमें सेवा करने वाले की ज्यादा इच्छा तो ले लो। जैसे आपकी धर्मपत्नी है और रसोई बनावे तो उसकी प्रसन्नता के लिए भोजन करो, नहीं भोजन करेंगे तो उसको दुख होगा, तो भी अच्छी बात है भोजन करा दो, कर लो, करो उसकी प्रसन्नता के लिए। तो प्रसन्नता के लिए लेना भी देना होता है, देना भी देना होता है, और स्वार्थ के लिए लेना भी लेना होता है, देना भी लेना होता है। तो भावना को बदल दो तो भगवान का काम करते हैं मौज से, प्रसाद पाते वो भगवान का, ठाकुर जी का प्रसाद पाते, ठाकुर जी के दरबार में रहते हैं तो सेवा करते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं तो सेवा करते हैं, ठाकुर जी का काम करते हैं तो सेवा करते हैं, सब सेवा ही सेवा करते हैं। हमारा घर है ना, हमारी संपत्ति है ना, हमारा वैभव कुछ नहीं, और बाल बच्चे में सब ठाकुर जी के हैं। तो हे महाराज आपके ठाकुर जी आपके परिवार का पालन करते हैं हम, तो एहसान भगवान पर करो कि आपके बाल बच्चों का काम किया हमने। नरसिंह जी महाराज कहते हैं जैसे, तो ये थोड़ी सी कृपा करके सीख जाए, कोई कथा न समझे, भाव भीतर का बदल दे। कैसे बदल दें? जैसे गोद जाने वाला बदल देता है अपने खास माँ बाप को, माँ बाप न मान करके जैसे गोद जाए उसका बेटा हो जाता, अब उसी घड़ी की चिंता करता है, उस जहाँ जन्म हुआ उसकी सही नहीं चिंता करता। बहनों माताएं ये अपने घर बाप के घर पर रहती हुई उसी चिंता करती थी, ब्याह आदि गई तो अब उसकी चिंता शुरू हो गई, उसका काम कर लिया। ऐसे अपना संबंध तो भगवान के साथ में साक्षात, यहाँ काम करो ठाकुर जी का करो, अपना काम ही नहीं है तो चिंता हमारे नहीं होगी, काम सब होगा। सेवा प्रति आदमी होते हैं स्वयं सेवक, मेले महोत्सव में जाते हैं, काम करते हैं, प्रबंध सब करते हैं, परंतु चिंता नहीं करते। बीमार हो जाए तो सेवा करेंगे अच्छी तरह से, मर जाए तो जला देंगे, अब रोए कौन, चिंता कौन करे, अपना था ही नहीं। ऐसे घर में सब प्राणी ठाकुर जी के खूब मस्ती से सेवा करें। सज्जनों क्या करें, घर में रहते रहते आनंद हो जाएगा। पर आफत कब आएगी कि मेरा घर है, मेरा कहना क्यों नहीं माने, मेरी बात चले, फंस जाओ। गीता ने कामना के त्याग की बात कही तो ये बात आती है, धन चाहे, संपत्ति, वैभव, आदर, आराम, दुनिया सुख चाहे तो कामना है, ऐसा अर्थ तो समझ में आता है, परंतु तो कामना का असली अर्थ क्या, मेरे मन की बात करे बस, ये कामना है मेरे मन की होनी चाहिए, मेरा हुक्म चलना चाहिए, मैं चाहूं जैसे ही काम होना चाहिए, इसका नाम कामना है।
तो नहीं, घर वालों की इच्छा का काम होना चाहिए, पड़ोसी की इच्छा का काम होना चाहिए, दूजों की इच्छा का काम होना चाहिए, अपनी इच्छा नहीं, अपनी कामना हटा दो, देखो निष्काम भाव से रह करके बड़ा भारी आनंद है। इतना आनंद त्रिलोकी का राज्य मिलने से नहीं होगा, त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और हुक्म चलाओगे तो वो आनंद नहीं होगा। जो आनंद इस बात में हो जाए कि घर वालों की सेवा बढ़ जाए हमारे से, बस इनके मन की हम कर दे, अन्यायुक्त हो तो कहे भाई ये तो आपका कहना अन्यायुक्त नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे हम। और नहीं हो सके ऐसी बात कह दे तो भाई लाचारी है, मेरे सामर्थ्य से बाहर की बात दो बार, एक नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है और एक नहीं कर सकते वो नहीं करना, कर सकते हैं करना चाहिए उसमें कर्म क्या बात कर दिया। असबल शरीर है, बीमार हो गए, वृद्ध हो गए, नहीं कर सकते भाई, कर सकते उतना कर देंगे, और करना चाहिए वो करेंगे, नहीं करना चाहिए नहीं करेंगे। ये कर्मयोग बड़ा ही सरल सरल है, बड़ा ही बढ़िया है और सबके लिए मौज करने वाले, और उसको भगवान का समझ ले तो भक्ति योग हो जाएगा, कैसी मौज की बात। ऐसा सिद्धांत बना ले, अपने मनमानी करने के मन में सोचना नहीं, ये गड़ी है, ये गलती है, और मेरे मन की हो जाए राजी होते हैं और दूसरे के मन की हो तो मन खट्टा हो जाता है ना, अपने तो आपके मन की होगी बहुत ही आनंद की बात है, हमारे मन की नहीं हुई बड़ा अच्छा। न्याय की बात हो तो तुम भी करो हम भी करें भाई, न्याय की बात, सिद्धांत की बात। एक बार गए थे आसाम में, वहां कहा भाई नमस्कार करो, बड़ों के चरणों में नमस्कार करो, नित्य कर्म रखो, ऐसा ऐसा कही बात। एक ब्राह्मण देवता बोले अभी थोड़ा दिन पहले नेहरू जी आए थे और उनको किसी ने नमस्कार कर लिया तो मारा उसको और कहा कि देश गुलाम बन गया, इसी से आपका भारत का पतन हुआ, गुलाम बन गया। तो किसी को नमस्कार नहीं करना, मैं गांधी जी को बड़ा मानता हूं, नमस्कार नहीं करता हूं, उन्होंने ऐसी बात कही। तो अब बोलो हम तुम्हारी बात माने कि नेहरू जी की माने, बताओ। मेरे साथ प्रश्न किया तो मैंने कहा भाई देखो, एक हमारी बात हो और एक नेहरू जी की बात हो तो दोनों बातों में मेरी न मान करके उनकी माननी चाहिए, हमारी नहीं माननी चाहिए। परंतु शास्त्रों की बात हो तो ना मेरी माननी चाहिए ना उनकी माननी चाहिए, शास्त्रों की माननी चाहिए, ऋषि मुनियों की माननी चाहिए। व्यक्तिगत मानो तो उनकी बात मानो और शास्त्रों की मानो तो फिर किसी व्यक्ति की मत मानो, क्यों तस्मात शास्त्रम प्रमाणं ते कार्याकार व्यवस्थित हो, संपूर्ण व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। तो भगवान की बात है, शास्त्रों की बात है, वो मानो, उसमें बड़ा लाभ है। तो शास्त्रों में क्या आया है, तो शास्त्रों में जहां कह भी ये प्रतंत्र हो जाएंगे, तो जब महाभारत का युद्ध हुआ है, भीष्म पर्व की बात आती, भीष्म पर्व और 43वां अध्याय, उसमें प्रसंग आता है, दोनों सेनाएं जब सामने जुटी, गीता का उपदेश समाप्त हुआ, उस समय महाराजा युधिष्ठिर शस्त्र छोड़कर के पैदल कौरव सेना में जा रहे हैं, भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव और कृष्ण भगवान सब साथ साथ जा रहे हैं। तो उन भाइयों के मन में संदेह हुआ कि राजा सब अभी कैसे जा रहे हैं शस्त्र छोड़ करके, विपक्ष होगी सेना में, भगवान कृष्ण क्या ठीक जा रहे हैं। कौरव सेना में हल्ला मच गया, अरे युधिष्ठिर क्या होता तू मर जाता,
अब ऐसे मौके पर दुर्योधन के शरण जाता है,
फिर उस शर्म नहीं आती, ऐसे लोग हल्ला कर रहे हैं।
युधिष महाराज चुपचाप जा रहे हैं, किसी से कुछ नहीं। पहले ही पहल पहुंचे पितामह भीष्म के पास, जो दादाजी होते हैं, उनके जाकर चरणों में नमस्कार किया। दादाजी, मैं युधिष्ठिर आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। जय हो बेटा तेरी, जय हो, ये आशीर्वाद दिया। जय मापनु, जय मवापनु, जय गोपाल, आशीर्वाद दे दिया और कहा, देख तू आ गया और नमस्कार करता तो आशीर्वाद देता, और नहीं आता तो साप देता। अब बोल क्या करना है, सुन ले बात मेरी। अर्थस्य पुरुषो दास, दासस्पर्थो न कश्यचित् इति सत्यम महाराज बद्धोस मर्धेन कौरवी। ये बोले भर, ये श्लोक भीष्म जी ने, ये द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, शल्य ने कहा। तो द्रोण और भीष्म और कृपाचार्य ने कहा, तो अर्थ क्या होता है कि अर्थस्य पुरुषो दास, मनुष्य धन का दास है। दासस्तर्थो न कश्यचित्, ये धन किसी का दास नहीं है, ये सच्ची बात है। इस वास्ते महाराज युधिष्ठिर, कौरवों का अन्न खाया है, कौरवों को पक्ष में रहा हूं तो पक्ष में ही हूं, अन्न खाया है, इस वास्ते तो मैं बंधा हुआ हूं, युद्ध तो इस पक्ष में रहकर करूंगा, और तेरी वरदान चाहे जो वरदान मांग ले, इच्छा हो तो मांग ले। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि महाराज, आप कहते तेरी जय हो तो आपके विपक्ष में रहते हुए जय मेरी कैसे होगी। कहते बहुत सच्ची बात कहता, मैं जब खड़ा हूं और मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए है, देवता के दानव के मानव किसी की ताकत नहीं मेरे पर विजय कर। जोर से कहा, कारण की इच्छा मृत्यु थे, बाल ब्रह्मचारी थे और इच्छा मृत्यु थी, जब चाहे तब मरे, चाहे तो वही क्यों मरना चाहे, इस वास्ते मेरे ऊपर कोई विजय कर नहीं सकता। तो फिर दादाजी हमारी विजय कैसे होगी, तो क्या मांगते मांगो। तो बड़े संकोच में पड़े, अंत में दादाजी ने कह दिया तो मांगा कि दादाजी हमें बात बताओ कि आप मरोगे कैसे। ये वरदान मांग तो कह, देखो बेटा अभी तो मरने का मन नहीं है हमारे, पर तेरा वरदान मेरे में हाथी रहा, जरूर बताऊंगा, मरने की बात बताऊंगा। ऐसे द्रोणाचार्य के पास सब पास बन गए, सबको नमस्कार किया और सबसे आशीर्वाद ली, फिर आशीर्वाद लेकर विजय करी। अब बोलो नमस्कार से पराजित कैसे हुए, नमस्कार दुर्योधन ने नहीं किया तो जय होगी क्या। तो भी जय तो होती है तो बड़ों के आदर सत्कार से होती है, आशीर्वाद मिलती है। अब थोड़ा इस बात पर विचार कर ले, बहम न पड़ जा, भीष्म जी महाराज धन के दास नहीं थे, कौन सा कुटुंब पालन करना था उनके, परंतु भाई इतना दिन इसके पांडव कौरवों के पक्ष में रहे, युद्ध के मौके पर हट जाना ठीक नहीं, और पांडव ये नीति पर है, धर्म पर है ठीक तरह से, और कहा तुम आते नहीं, मेरे से आज्ञा नहीं मांगते तो सब देता, नहीं तो वरदान दिया। दुर्योधन को साफ नहीं देते, वो धर्म को जानते ही नहीं, कर्म नहीं करते, क्या है तू जानकार है, नमस्कार नहीं कर पा, आज्ञा नहीं मांगता, तो हुक्म मांगा, नमस्कार किया तो विजय हुई। तो धन के दास नहीं किंतु कर्तव्य प्राप्त हो गया, वो कर्तव्य का पालन किया विष्णु जी महाराज ने, और नमस्कार करने से आशीर्वाद दिया, तो वो नमस्कार के भूखे थे क्या। भूखे होते पीड़ितों को भी कहते हैं कि नमस्कार कर रहा मेरे यहां। न्याय धर्म का पालन होना चाहिए ठीक तरह से, तो इस वास्ते नमस्कार करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। आयुर्वेद आयुषो बलम, मनुष्य ने लिखा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की आज्ञा पालन करता है, उनके पास रहता है, उनके चरणों में नमस्कार करता है तो उम्र बढ़ती है, विद्या आती है, संस में यश होता है संसार में और बल बढ़ता है, चार चीज बढ़ती है उससे। तो बड़ों के नमस्कार करने से लाभ होता। तो मैंने कहा भाई नमस्कार करने के बाद शास्त्र की है वो, किसी व्यक्ति की न मानकर शास्त्र की मानो। गीता कहती तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यकारी व्यवस्थित हो, तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम करो, बड़ों की सेवा करो मस्ती से। ये तो अवसर मिला है थोड़ा, जैसे प्याऊ पर बैठने का अवसर मिल जाए जल प्याओ भाई आ जाओ उसको जल प्याओ बड़े आदर सत्कार से, खाने को तो वो दे दो चला जा, जयराम जी की बैठो तो मर्जी उसकी, ऐसे अपने तो ईश्वर रहो प्याऊ पर सेवा कर दो अपने। और हमें लेना नहीं है, लेने की इच्छा करेगा वो रोएगा पश्चाताप करेगा क्योंकि देने वाले रहेंगे नहीं, तेरा भी सही रहेगा नहीं, लेने की वासना रह जाएगी तो सांप बनना पड़ेगा, न जाने क्या क्या कुत्ता गधा यहां बढ़ना पड़ेगा। लेने की इच्छा है ही नहीं, देने की देने तो मस्ती में रहो आनंद में रहो, कर्जा चढ़ेगा ही नहीं। इस वास्ते भगवान की भक्ति करना, भगवान का ही काम करना, भगवान के दरबार में रहना, भगवान के प्रसाद पाना है, भगवान के जनों की सेवा करनी है, तो भगवान ही करनी है तो भगवान की प्राप्ति होगी भाई, प्राप्ति भगवान की होगी भाई और क्या होगा। तो घर में रहते हुए इस विद्या को सीखो, ये विद्या भगवान ने सिखाई है, हरेक काम किया जाए उस काम करने का तरीका सीखे बिना काम बढ़िया नहीं होता, और सीख लिया करता नहीं तो काम बनता नहीं। तो इस वास्ते घर में रहने की सुंदर विद्या है कि सबकी सेवा करे पर किसी से सेवा चाहे नहीं, ये घर में रहने की विद्या है। हृदय में चाहना नहीं रखे, ले तो सेवा लेनी पड़े तो ले उनकी प्रसन्नता के लिए, तो वो भी ये सेवा करना है, लेना भी सेवा करना, उनकी प्रसन्नता के लिए लिया। तो इस तरह से संसार में रहने की ये विद्या है, ये गीता कह रही है। और वो काम उनकी सेवा नहीं भगवान की समझो, ये तो भगवान के बालक हैं सब, इनकी सेवा करने से हमारे प्रभु राजी होंगे, प्रभु के बाल बच्चों की सेवा करने से प्रभु राजी होंगे, प्रभु प्रीत्यर्थ करें सेवा, ये भक्ति हो जाता है। मत कर्म कर मत परमा मत भक्त, अरे संग वर्जिता निर्वैर, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है संसार में है, इसलिए क्या तो चिंता करे। रज वो रोवे कौन को हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं रहे सो जावन हार। रज वो रोवे कौन को, किसको रोवे भाई, रोने सो आते नहीं वो, चले गए वो तो आने के है नहीं, और है उनके साथ हंसे तो कौन विचार कैसे हंसे, ये भी जाने वाले हैं कितना दिन हंसो गए भाई, न हंसना है न रोना है, सेवा कर दे रही खूब मौज से मस्ती से, कितनी बढ़िया विद्या गीता ने सिखाई। जब रोवे कौन को हंसे सो कौन गए सो आवन के नहीं रहे सो जावन हार। इस बात खूब उत्साह से सेवा करे मस्ती से, ये विद्या सीख लो। आप हम इकट्ठे हुए हैं अपने विद्या अध्ययन के लिए हुए हैं, संसार में रहने की विद्या सीख ले, विद्या तो जिससे फिर कोई बाधा न पहुंचे, उसी रीति से संसार में काम करें। एक संतों की बात सुनी कि एक संत रहते थे शहर के पास, तो लोग सत्संग करने को जाया करते, तो महाराज ने रामायण सुना दिया, गीता सुना दी, भागवत सुना दी, महाभारत सुनाया, बहुत से ग्रंथ सुना दिए, वर्षों तक सुनाते रहे। फिर कहा भैया अब नई बात कहां से लाए, रामायण वही है गीता वही है, अब बंद करो, नई बात कहां से लाए, बात तो वो पुरानी की पुरानी, इस बात को बंद करो। तो कई लोग चुप हो गए, और सत्संग करने वाले तो बड़े बड़े विचित्र विचित्र पुरुष होते हैं, एक आदमी खड़ा होकर बोला कि महाराज बंद क्यों करे? कहते नहीं कहां से ला रहे, गीता सुना दी वही तो गीता सुनाता हूं फिर। नई की बात नहीं है, ये पुरानी होती है नहीं। जैसे कोई भोजन करे तो भोजन करने में भाई गेहूं खा लिया तो बाजरा खा लो, तो ज्वार खा लो, कोई मक्की खा लो, अरे पीछे फिर वो कि वो क्या, ये तो खाया हुआ है ही, बंद कर दे रोटी खानी बंद कर दे। घर नई रोटी कहां से लाओ भाई, दाल भात वही है, खिचड़ी बना लो जाए, रोजी ने क्या खा है, अरे पानी रोजना पी लिया है, कोई नए नए कूड़ा का पी लिया, अब गेहूं का पी लिया, अब क्या पी रहे जरूरत है, अब पी लिया, और जिसमें श्वास लेने की जरूरत ही नहीं, अब नया श्वास क्या आ गया, तो ये क्या फूफा शुरू करी है, बंद करो तो क्या ठीक है, तो मर जाएंगे भाई। इसी तरह से सत्संग है हमारा, कहते सत्संग कैसे है, तो उसने एक दृष्टांत दिया, मैंने संतों से सुना है, कहते सांप होता है एक नेवला होता है, इनके आपस में खटपट हुई बैर रहता है, दोनों लड़ाई करते हैं, तो सांप डस जाता है उसको, वो सांप को काटना चाहता है, सांप उसको काट लेता है, जब जहर चढ़ जाता है तो वो दौड़ करके बिल में चला जाता है, वहां एक बूटी रखता है, वो चबा ली थोड़ी सूंघ ली, जहर दूर हो जाता है, फिर सांप से लड़ता है, सांप बेचारा घायल हुआ रहता है, अंत में सांप को मार लेता है। ऐसे महाराज हम तो सत्संग में आते हैं तो ये बूटी सूंघ लेते हैं, भगवान की बात सुन लें, गीता की बात सुन लें, तो इससे वो लड़ाई होती संसार के, जाकर लड़ाई करते हैं फिर, और वो चढ़ जाता है जहर, रहा अगर देश ईर्ष्या मार जहर चढ़ जाता है, तो जहर चढ़ जाए छटपटाव, तो चलो भाई वहां जाकर सत्संग कर लेते हैं। सदर करना क्या है, सेवा करनी है, इनकी सबको सेवा करनी है, वे अपनी न माने तो क्या है, जहर उतर जाता है। नहीं तो देखो छोरा का हमें इतने ब्याह किया, इतने बड़े किए, कमाने लायक किया, फिर अलग हो गए, हमारे कुछ देते ही नहीं, सेवा ही नहीं करते, मार जहर चढ़ गया, वहां जहर सुन अरे अपने है ही नहीं, अपने दिन की सेवा ही करना है, बड़ी अच्छी बात। तो खुद पढ़ा दिया, ब्याह दिया और पढ़ा दिए, योग्य बढ़ा दिया, अब अरे हाँ बना बनी अब पधारो, अब काम धंधा करो, रुपये ले जाओ, व्यापार और करो, बस अपने तो उर्ण हो गए, बड़ी अच्छी बात है भाई, कैसी मौज की बात। तो ये बूटी सूंघ ले कि ये पहले हमारे थे नहीं, फिर हमारे रहेंगे नहीं, तो बीच में हमारे मान मान के क्यों फंसे, हम रोवे क्यों, ये जहर कहां चढ़ गया ऊपर, वो जहर दूर हो जाता है। इस वास्ते सत्संग तो रोजाना चलना चाहिए, इसके बिना महाराज हम जीत कैसे पाएंगे, हम तो हार जाएंगे, जहर चढ़ जाएगा मर जाएंगे। तो सत्संग रोजाना करना, भजन स्मरण रोजाना करना है, ये तो खास हमारे जीवन की बूटी है, असली खुराक है आत्मा की खुद की, जैसे अन्न जल है शरीर की खुराक, शरीर इससे काम देता है, ऐसे खुद की खुराक है सत्संगति। तो सदविचार सदग्रंथ सत्संगति ऐसे सत्प्रेम भगवान में ये हमारा हो जाए, फिर काम करो संसार में तो जहर आएगा नहीं, चढ़ेगा ही नहीं, मैं और मेरा ये जहर है, मेरा है तू ऐसा है ऐसा है, जहर चढ़ जाता है, लहरा आती है जहर की, लहरा चढ़ती है बना, उसने मेरे को ऐसा कह दिया, उसने मेरी बात ये नहीं मानी, उसको ऐसा कर दिया, उसने इतना कर दिया, जहर की लहरा चढ़ रही है भाई, चलो कि उतर जाए जहर, झाड़ जरा झाड़ो, इसको जहर को झाड़ो कोई, चलो अमृत भाई बूटी खाओ, भगवान को याद करो, गीता का पाठ करो, गीता का पाठ करते ही समाधान होता है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे अच्छे पुरुषों ने कहा है कि गांधी जी के वचन मैंने पढ़े थे कई वर्षों पहले, कहते हमारे शंका हो जाती है, कोई बात उलझन हो जाती है तो गीता जी का पाठ करता हूं, उसमें समाधान मिल जाता है। अगर बच्चा खेलते खेलते भूखा हो जाए तो माँ की गोदी में चला जाए, दूध पी ले अपना प्यार से स्नेह से, फिर मौजी हो खेलो। इस वजह से गीता माता ऐसी गोदी में चले जाए, अरे गीता दुग्ध गीता अमृत बहुत बढ़िया अमृत भरा हुआ है, इतना बढ़िया अमृत है गीता में भरा हुआ, मौज हो रही, वो पी पी कर हृष्ट पुष्ट हो जाओ खूब, कोई आवे ही नहीं बाधा दे, आवे ही नहीं, ऐसा गीता का दूध पिया। अरे माँ सबकी तैयार, कैसी मौज की बात है। छोटा और बड़ा और पढ़ा लिखा सामान्य पढ़ा हुआ और बच्चा कैसा ही क्या हो, गीता माँ के शरण चले जाओ। गीता का पूरा अर्थ नहीं समझते, पढ़े लिखे नहीं है, उनको भी गीता से है बल मिलता है। एक सज्जन मिले थे, वो गीता के बड़े मस्त हो जाते, पढ़े लिखे थे, अर्थ नहीं आता था ठीक तरह से। मैंने बोला गीता में क्या, गीता में लिखा है जोश ये सर्वकर्माणी विद्वान युत समाजन विद्वान चाहिए जोश हूं काम करे जोश से, ठीक ये अर्थ किया। अब कुछ भी अर्थ कर ले मतलब तो ठीक ही रहा, सिद्धांत में कोई फर्क है नहीं। अब दूसरी प्रीति से उन्हें याद नहीं किया तो क्या हुआ, भगवान ने कहा जोश ये सर्वकर्माणी विद्वान युत समाचरण। अरे माँ का दूध है ना सबके लिए ठीक होता है, प्यार पूर्वक माँ पिलाती है तो गीता है, गीता का दूध है, इसको पियो ऐसे अनुसार से अपना जीवन बनाओ। अरे गीता हो जाए जीवन, जीवन हृष्ट पुष्ट हो जाए खूब, रोम रोम में गीता बैठ जाए, भीतर में भावों में गीता बैठ जाए, गीता की चलती फिरती मूर्ति बन जाए, कैसी बात है मौज की। तो मत कर्म कर मत पर मो मत भक्त संग वर्जित, अरे निर्वाहिरा स्वरूप उसे किसी से भैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, क्योंकि हमारा अनिष्ट करते हैं वो तो हमारे पर कृपा करते हैं, पापों का नाश करते हैं, सेवा करते हैं वो पुण्यों का नाश करते हैं। आपको दिखता सेवा करने वाला अच्छा, अरे महाराज महाराज करे हाथ जोड़े ये कहीं कहीं धोखा देंगे, ये पुण्यों का नाश करते हैं और फंस जाएंगे कहीं, पर मरो तो याद आएंगे ये, नहीं तो तुझे मौज हो रही आनंद। इस बात से उन्हें सेवा करो और चाहो मत, मत कर्म गण मत परमा मत भक्त संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूते हूँ यह स मामेति पांडव। तो संसार के साथ ना राग करो ना द्वेष करो, और भगवान के अपने हैं शक्ति बात है, भगवान के भजन करो, उसी का काम करो, उसी के पराय करो, उसी को प्रेम करो, वही अपना है सम्मान। ये साक्षात चीज है भक्ति, सुगम भक्ति, बड़ी सरल भक्ति, घर में रहते रहते भक्ति, काम करते करते भक्ति, कितनी बढ़िया बात। आम के आम उठने के दाम मौज हो गए आनंद। नारायण 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 नारायण। कृपा करके थोड़ी देर और विराज रहे, कीर्तन के बाद ही उठे इस पंडाल में। पूरे दो दिन
आत्मायानंद घन आनंद घन प्रभु सत्य घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन प्रभु घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद।